समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और इन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट अनीता।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून, यू ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM एंड फॉर ऑल आवर लिसनर्स एज ऑलवेज वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, हेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, बिजनेस कैप्सूल्स, tributes and much more. All this over the next 30 minutes. So we begin with the news headlines first. Akarshita?
जी, भारत और वियतनाम ने व्यापक रणनीति साझेदारी को और अधिक सक्रिय करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की।
Search and rescue operation for survivors continues in landslide hit Wayanad. Death toll crosses 260.
हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और मूसलाधार बारिश में 55 लापता।
सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स सब क्लासिफिकेशन विद इन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज परमिसेबल।
भारत ने श्रीलंका के कच्चा तीवू द्वीप के उत्तर में एक भारतीय मछुआरे की मृत्यु पर विरोध दर्ज करते हुए श्रीलंका के राजदूत को तलब किया।
एंड इन ओलंपिक्स टुडे इंडियन शूटर स्वप्निल कुसाल क्लिंचेस थर्ड ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया। And it's time now for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we will talk about the World Breastfeeding Week. Every year, World Breastfeeding Week is celebrated in the first week of August. First observed in 1992, World Breastfeeding Week honors the Innocenti Declaration, which was signed in August 1990 to protect, promote and support breastfeeding by government officials, the World Health Organization, UNICEF and other organizations. It is observed globally as an attempt to raise awareness about the importance of breastfeeding and its benefits. Its main aim is to support and encourage breastfeeding as a vital aspect of health and well-being for both the mother and the child.
हर साल विश्व स्तनपान दिवस वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन द्वारा चुनी गई एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है अंतर को पाटना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। ये अभियान उन तरीकों पर प्रकाश डालेगा जिनसे परिवार, समुदाय, समाज और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर सभी स्तनपान कराने वाली माताओं को उनकी विविधता और उनकी स्तनपान यात्रा के दौरान समर्थन दे सके। WHO के अनुसार प्रसव के बाद मां का पहला दूध आता है, नवजात के लिए संपूर्ण आहार होता है। माना जाता है कि ये दूध जन्म के एक घंटे के भीतर ही बच्चे को देना शुरू कर देना चाहिए। मां का पहला दूध बच्चे के लिए काफी फायदेमंद होता है। मां के दूध में प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं। मां का दूध बच्चे को जीवन भर होने वाली कई तरह की बीमारियों से बचाता है, इनमें डायबिटीज भी शामिल है। साथ ही अगर शिशु मां का दूध ना लेकर बोतल का दूध ले तो इससे उसमें संक्रमण का खतरा बना रहता है और स्तनपान और मां और बच्चे के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग को भी मजबूत करता है और ये मां और बच्चे दोनों के सेहत के लिए जरूरी है। और अनीता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो जो एक जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसको हमेशा जो माँ से एकदम लगा के रखाया जाता है स्तन के पास से कि उसको वो गर्माहट प्रदान करती हैं और अगर वो माँ के साथ नहीं रहता तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, बहुत जल्दी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो ये कितना ज्यादा जरूरी है दोनों की इमोशनल बॉन्डिंग के लिए भी स्तनपान।
Absolutely. Also, Akarshita, like you said, breastfeeding is the first, best and easily available and also free food for the child. It is a unique measure of preserving the health of the child and the mother because at an early age, it promotes the physical, emotional and, like you mentioned, cognitive development of the child, protects it from respiratory and intestinal infections and at a later age from the tendency to gain weight, diabetes and also high blood pressure. It has a reciprocal benefit for the mother also, protecting her from breast and ovarian cancers, the tendency to gain weight and also other chronic diseases.
नवजात व छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत के समान है. डॉक्टरों की माने तो शिशुओं को जन्म से लेकर 6 माह तक माँ का दूध पिलाना आवश्यक है. हालांकि इस बदलते परिवेश में अब महिलाएं नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने से परहेज भी करने लगी हैं. उनका मानना है कि स्तनपान से शारीरिक कमजोरी होती है, इस वजह से वे स्तनपान कराने की बजाय बाजार से डिब्बाबंद दूध खरीदकर शिशुओं को पिला देती हैं. इसको लेकर डॉक्टरों का कहना है कि स्तनपान कराने से महिलाओं में शारीरिक कमजोरी नहीं आती. और अनीता, जैसा कि हम जानते भी हैं कि आजकल का ये जो ट्रेंड चला है, बहुत से ऐसी माएं हमें देखने को मिलती हैं जिनको बड़ा उनको लगता है कि उनका वेट कम हो जाएगा या उनको वो कमजोर महसूस करेंगी अगर वो स्तनपान, और बहुत ही कम उम्र में वो बच्चों को, मतलब एक कुछ ही महीने हुए होते हैं कि वो स्तनपान कराना बंद कर देती हैं. लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है. उसके जितनी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सब उस दूध से ही आती है, उस माँ के दूध से. और बात करें माँ के दूध की अवधि की, तो ये हर एक महिला में अलग होती है. कई माताओं को बच्चे के जन्म से लेकर 5 वर्षों तक दूध आता है, वहीं कई माताओं में ये 5 वर्ष से कम समय तक रहता है. और माना जाता है कि ये माँ की डाइट पर निर्भर करता है. आज हम देखते हैं कि जो बहुत गरीब होते हैं या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, मतलब उनके बच्चे हम देखते हैं कि बहुत कम उम्र में वो इलाज करा रहे हैं क्योंकि उनको वो पोषण तत्व नहीं मिल पा रहा है. क्योंकि जब माँ को सही पोषण तत्व नहीं मिल रहा है तो वो बच्चे को कैसे जो है मिलेगा. तो इसीलिए इसमें जो है माँ और बच्चे दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. माँ के ही पोषण से बच्चे को पोषण मिलता है. और इसमें दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक ही स्तन में दूध आता है, और अगर बच्चा दूध पीना छोड़ दे तो माँ को दूध बनना बंद हो जाता है. तो इससे बहुत सारे लोग जो शुरुआत में ही जो है बच्चे को स्तनपान कराना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि जब धीरे धीरे पिलाते पिलाते ही वो जो है ब्रेस्ट फीडिंग करते करते ही दूध आना शुरू. और बच्चे को 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना चाहिए और उसके बाद कम से कम 2 साल और उससे अधिक समय तक पूरा आहार देना चाहिए. उसके बाद भी आप दे सकते हैं अगर आप.
Unfortunately, Akarshita, there are certain myths also, like you said, women tend to think postpartum that, you know, if they breastfeed the child, they'll lose their, let's say, body shape or they'll become weight gain and issues like that. And actually, the medical fact is that it has a dual benefit for the mother as well as the child. The child needs the first milk that comes to the mother. And of course, it's very good for the mother also because it really helps in shedding the weight that she has gained during pregnancy. Also, because of this event, worldwide events, seminars and workshops are also arranged to create awareness also. Throughout the week, the difficulties are addressed faced by mothers and to increase knowledge of the benefits of breastfeeding. These events also show how important it is to have supportive policies, accommodating employers and a culture of understanding in order to foster an atmosphere where breastfeeding is accepted and also encouraged.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
An expert team on disaster risk reduction from Japan visited Sikkim State Disaster Management Authority, Land Revenue and Disaster Management Department. Government of Sikkim, as part of a monitoring tour of northeastern states following a 2-week JICA training program in Tokyo recently. We have a report.
The team led by Mr. Kuano Takeshi, head of the project, meet with the Relief Commissioner Com Secretary Ms. Namrata Thapa at the conference hall of the Land Revenue and Disaster Management Department to discuss disaster management strategies and assess recent disaster impact in the state. The meeting focused on disaster management strategies in Sikkim, emphasizing both short-term and long-term measures. Key points included the need for an early warning and monitoring system, the potential for a mobile-based system, and the construction of embankment. The discussion highlighted the unique challenge posed by landslide in the region, including the need to relocate affected populations. The Japanese team advanced technology and expertise were acknowledged as the crucial for addressing this issue. Training local disaster mitigation personnel was also emphasized as a priority. The Japanese team, which include consultant, conducted a two-day field visit to area affected by recent natural disaster. The team was assisted by Rajiv Roka, additional director, and Keshav Koirala, assistant director from SSDMA. On July 29, the delegation visited Mojua and Pathing, led by sub-divisional magistrate Mr. Thirin Norgel Tang. The team were able to get an insight from the magistrate on the tragedy that unfolded due to a recent landslide. On July 30, the team, joined by Mr. Priyank Jindal, senior consultant from National Disaster Management Authority, visiting Ambithang, Paksep, and Naga, guided by Block Development Officer Mr. Kailas Thapa. This visit aims to strengthen disaster management capability and foster international cooperation in mitigating the impact of natural disaster in the region. Diliram Dulal, Akashwani News, Gangtok, for Parikrama.
अनीता, क्या आप बता सकती हैं कि आजकल एक चीज जो हमें हर जगह देखने को मिल रही है, सड़कों से लेके हर जगहों पे, वो क्या है?
Are you talking about the Kanwars?
जी, उत्तराखंड की तीर्थ नगरी हरिद्वार इन दिनों भगवान शिव के उद्घोष से गूंज रही है. दरअसल कांवड़ यात्रा के चलते हरिद्वार शहर में शिव भक्तों की भारी भीड़ है. कांवड़ यात्रा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं उत्तराखंड से हमारे संवाददाता साक्षी सिंह के पास.
उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है. आज हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है. पड़ोसी राज्यों से लाखों की संख्या में कांवड़ हरिद्वार में पवित्र गंगाजल लेने के लिए पहुंच रहे हैं. पूरी तीर्थ नगरी बम भोले जयशंकर के उद्घोष से गूंज रही है. विभिन्न शिवालयों में गंगाजल चढ़ाने के साथ कल कांवड़ यात्रा संपन्न हो जाएगी. कांवड़ियों की सुविधा के लिए शासन प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं. विभिन्न स्थानों पर कांवड़ियों के लिए सूक्ष्म जलपान और भोजन की व्यवस्था के लिए भंडारों का आयोजन किया गया है. कांवड़ मेले के दौरान आकर्षण का केंद्र कांवड़ियों द्वारा लाए जा रहे एक से एक बढ़कर कांवड़ हैं, जो रंग बिरंगी लाइटों से सजाई गई हैं. कांवड़िये डीजे की धुनों पर कांवड़ लेकर जा रहे हैं. सूरज के ढलने के साथ ही ये रंग बिरंगी झांकियां वाली कांवड़ जहां से गुजरती हैं, वहां देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है. लाइटिंग की वजह से रात को नजारा और भव्य दिखाई दे रहा है. वहीं कांवड़ मेले के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ओम पुल के समीप आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों से आए शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के चरण धोए और उन्हें सम्मान स्वरूप गंगाजल भेंट किया. इस अवसर पर हटकी पौड़ी से लेकर नारसन बॉर्डर तक कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को कांवड़ियों का स्वागत करने का सौभाग्य मिला है. कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाकर सरकार इस यात्रा में कांवड़ियों का सहयोगी बनकर कार्य कर रही है. इस बीच कांवड़ यात्रा के आखिरी पड़ाव में डाक कांवड़िये भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. ये कांवड़िये गंगा जल भरने के बाद अपने गंतव्य पहुंचने से पहले कभी भी विश्राम नहीं करते. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह.
And after Uttarakhand, you go to Kerala, where the rescue workers are continuing search operations in Mundakai, Atamala, Churalmala areas for the third day in multiple landslide hit Wayanad district. Police sources said 260 persons have lost their lives so far, of which 99 bodies remain unidentified. 86 dismembered body parts have been recovered from the affected area. More from our correspondent.
Search operations are in full swing by the joint forces in the worst-hit Mundakai, Churalmala and Attamala region in Wayanad and in Chaliyar River. Police informed that the inquest proceedings of 260 people who lost their life in the disaster have been completed. 86 dismembered body parts were also recovered. Over 5,500 people were rescued from the region. There are currently more than 8,000 people in various relief camps in the district. The construction of the Bailey Bridge by the army at Mundakai is on the last leg. With the completion of the bridge, the rescue operation is expected to speed up. More machines have also been brought to the sites to speed up the rescue. Chief Minister Pinarayi Vijayan, after the all-party meeting in Wayanad, informed that all efforts will be done to find the victims and also appreciated the efforts of the rescue team, mainly the Indian Army. Lok Sabha opposition leader Rahul Gandhi will be visiting Wayanad today. Mayusha with reports from Arun Vincent from Wayanad. Kainat for Akashvani News.
And we now take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
The non-cooperation movement was initiated by the Indian National Congress, led by Mahatma Gandhi, on the 1st of August 1920 against the Rowlatt Act. It is said that the Home Rule movement that was started by Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak exactly 4 years ago on the 1st of August 1916 set the stage for the non-cooperation movement. Both movements form an integral part of the history of the struggle for independence in India.
The central feature of the non-cooperation movement was that it was a peaceful and non-violent one, keeping with the principles of Gandhiji. On the 22nd of February 1922, in Chauri Chaura, Uttar Pradesh, the non-violent protest was disrupted and 22 policemen were killed, leading to suspension of the movement by Gandhiji.
Despite the movement's failure to achieve Swaraj, it was a remarkable movement in which the people were united like never before. It was truly a mass movement involving a huge number of people, even in remote villages and towns. The movement shocked the British administration and uplifted the spirits.
We also remember Gandhian freedom fighter Ram Narayan Chaudhary, who was born on the 1st of August 1895 at Neem Kathana area of Rajasthan. He dedicated over three decades of his life to India's independence struggle and spent 6 years in jail for fighting against the British Empire and for the people oppressed by the princely states in Rajasthan.
Ram Narayan Chaudhary joined Kranti Dal while receiving education in engineering at the Maharaja College, Jaipur. He was drawn by the revolutionary principles of Bal Gangadhar Tilak, Aurobindo Ghosh, Giuseppe Mazzini, Swami Vivekanand, among others. His life took a turn towards non-violent revolution after he heard Gandhiji's speech in Calcutta in 1915 as a student.
Ram Narayan rejected the offers of scholarship and foreign education, instead choosing to educate the young minds. In 1917, he joined Jamnalal Bajaj and started teaching at the Marwadi Education Society at Wardha.
On the suggestion of Gandhiji, Ram Narayan went back to Rajasthan and created the Rajasthan Seva Sangh with the aid of Vijay Singh Pathik, Shobhalal Gupta, Maniklal Verma, Haribhai Kinkar and Bhavarlal. The chief purpose of Rajasthan Seva Sangh was to uplift the poor and downtrodden of Rajasthan and work in tandem with the landless labourers of the region.
Since 1920, both Ram Narayan and his wife Anjana Devi started living on the principles of aparigraha and austerity. They accepted khadi as integral parts of their lives. The salt march brought a new flavor of valor, strength and responsibility in the life of Ram Narayan. During the salt march, Ram Narayan took the administrative responsibilities of the Sabarmati ashram.
He later joined Gandhiji at Dandi on the 5th of April 1930. On Gandhiji's advice, he soon left for Ajmer and urged the salt producers to defy the law. Ram Narayan was arrested after this speech and sent to Ajmer Central Jail.
Ram Narayan actively participated in the Quit India movement in 1942 in Ajmer and was arrested for 3 years. After his release from prison, Ram Narayan moved to Sabarmati Ashram and translated a bulk of Gandhian literature.
After independence, Ram Narayan dedicated his life to social work and writing. He passed away in Ajmer on the 4th of April 1989. Salutes the Gandhian nationalist Ram Narayan Chaudhary.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो हम सभी को पता ही है आजकल क्या चल रहा है, पेरिस ओलंपिक्स।
In Paris Olympics today, an Indian contingent is in action in boxing, archery, badminton and shooting on day 5 of the mega quadrennial event. And now we take you live to our correspondent Shaurya Chaudhary in Paris. So, hello Shaurya.
Hi, bonjour.
What are the latest updates from the Olympics arena?
Of course, as you all know by now, Swapnil Kushale has won the third medal for India from this year's Olympics at Paris, and it's his debut Olympics. He was brilliant today in the three positions 50 meter event. He qualified yesterday for the final, and today he was actually trailing for the first two positions. Then he sort of returned, made a grand comeback, and ended up in the bronze medal position. Brilliant performance there, and third medal for India. That was a great start to the morning for the Indian contingent. Unfortunately, after that, there hasn't been much success. We have lost in boxing. Nikhat Zarin has been knocked out by the Chinese world champion. It was her first bout. It was a very tough bout. She acknowledged that it would be tough for her, and she got knocked out, a unanimous decision there, and she took it very sportingly. She also spoke to Akashvani after that. Apart from that, in archery, Praveen Jadhav has also been knocked out. It was again a tough draw for him, and he has also kind of bowed out, but there are still archers left in the in contention. There's Deepika Kumari, there's Bhajan Kaur, and the mixed team event is tomorrow. Great medal prospect there. And in hockey, we lost to Belgium 2-1. It's a close match, and India fought really well. So the spirit is really upbeat till now.
Okay.
The inspiration from the shooters has really kind of translated into other sports, and there's been success, there's been failure, but the spirit is really upbeat.
As we say, Shaurya, you win some, you lose some, right? Exactly. But you have to keep your spirit up right up to the last day, right up to the last event. Thank you so much for giving us updates. This is Anita from Delhi saying bye-bye. And time now to give you the business update. India's equity benchmark indices Sensex and Nifty hit record highs today. The BSE Sensex added 126 points or 0.15% to close at 81,868. The NSE Nifty added 60 points or 0.24% to close at 25,011.
और श्रोताओं, अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। तो इस कड़ी में सबसे पहले आज हम याद कर रहे हैं मीना कुमारी को। आज फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी की जयंती है। इनका पूरा नाम महज़बी बानो था। मीना कुमारी अपनी दर्द भरी आवाज और भावनात्मक अभिनय के लिए दर्शकों के बीच बहुत प्रसिद्ध रहीं। उनकी साहिब बीबी, गुलाम, पाकीज़ा, परिणीता, बहु बिगम और मेरे अपने दिल को छू लेने वाली कलात्मक फिल्में हैं। मीना कुमारी को हिंदी फिल्म जगत में अजय ख्याति मिली, और जैसे दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, ठीक उसी तरह मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा गया। और साहिब बीबी, गुलाम और ये सारी उनकी बहुत प्रसिद्ध फिल्में थी, और उन्हें चार बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
हम तेरे प्यार में सारा आलम हो बैठे हैं, हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम हो बैठे हैं, हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा।
मीना कुमारी, यस, the Indian actress, poet, who worked in Hindi films, and also, like Akarshita said, the tragedy queen, regarded among the finest and the greatest actresses in the history of Indian cinema. In a career spanning 33 years from child actress to adult, Kumari starred in over 90 films. She won 4 Filmfare Awards in the Best Actress category. She was the recipient of the inaugural Filmfare Best Actress Award for Baiju Bawra in 1954. In the 13th Filmfare Awards, 1966, she won her last Best Actress Award for Kajal, a snippet of a song from that film.
मन दर्पण कहलाए तोरा, मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
Meena Kumari also designed the costumes in Pakiza and passed away on 31st of March 1972. Today is also the death anniversary of Thomas Amakim, the Irish folk musician, artist, poet and storyteller. He was best known as a member of Clancy Brothers and Tommy Makim. He played the long-necked five-string banjo, tin whistle, low whistle guitar, bodhran, bagpipes and sang in a distinctive baritone. He was sometimes known as the Bard of Armagh, taken from a traditional song of the same name, and the godfather of Irish music.
नवंबर मेरा गहवारा है, ये मेरा महीना है. इसी माह मनवर में मेरी आंखों ने पहली बार सूरज की सुनहरी रोशनी देखी, मेरे कानों में पहली बार इंसानी सदा आई. सन 1913 में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध शायर अली सरदार जाफरी के लिए निश्चित ही ये एक यादगार महीना रहा होगा. आज उनकी पुण्यतिथि है. उनका झुकाव वामपंथी राजनीति के होने के कारण वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और राजनीतिक उठापटक का नतीजा ये हुआ कि उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और उन्होंने कई रचनाएं जेल की सलाखों के भीतर लिखी. उनकी मुख्य रचनाएं हैं परवाज, नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, अमन का सितारा, एशिया जाग उठा और पत्थर की दीवार. उन्हें पद्मश्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है.
Today is the birth anniversary of Yves Saint Laurent, the French fashion designer who in 1962 founded his eponymous fashion label. He's regarded as being the foremost fashion designers in the 20th century. In 1985, Caroline Milbrank wrote about him, and I quote, "The most consistently celebrated and influential designer of the past 25 years, Yves Saint Laurent can be credited with both spotting the couture's rise from its 1960s ashes and with finally rendering ready-to-wear reputable wear. He developed his style to accommodate the changes in fashion during that period, and he approached his aesthetic from a different perspective by helping women find confidence by looking both comfortable and elegant at the same time."
आज ही हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री की पुण्यतिथि है. उन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोंडा, कटोरा भर और भूतनाथ जैसी रचनाएं की. भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था. हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है. है ना अनीता, हमने चंद्रकांता के बारे में तो सुना ही होगा, जिससे वो सीरियल आता था और हम वो देखते थे. इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया था और इस किताब का आस्वादन करने के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी भाषा सीखी और बाबू देवकीनंद खत्री ने तिलस्मी, अयार और अयारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बना दिया था.
Today is also the birthday of Samuel Alexander Mendes, popularly known as Sam Mendes, British film and stage director, producer and screenwriter. In 2000, Mendes was appointed a CBE for his services to drama, and he was knighted in 2020 New Year's Honours List. In 2000, Mendes was awarded the Shakespeare Prize for Alfred Dorfer Foundation in Hamburg, Germany. And in the year 2005, he received a Lifetime Achievement Award from the Directors Guild of Great Britain. In the year 2008, the Daily Telegraph ranked him number 15 in the list of 100 most powerful people in British culture. He directed films like Revolutionary Road, the James Bond films Skyfall and Spectre. I'm playing a snippet from Skyfall's theme.
आज ही कांठे महाराज की जयंती है. वे भारत के प्रसिद्ध तबला वादकों में से एक थे. वे विख्यात तबला वादक किशन महाराज के चाचा थे और कांठे महाराज का संबंध भारत के संगीत घरानों में से एक बनारस घराने से था. कांठे महाराज को प्रथम संगीतज्ञ माना जाता है जिन्होंने तबला वादन द्वारा स्तुति प्रस्तुत की थी. आइए सुनते हैं उनका ये तबला वादन. Thank you. सन 1961 में कांठी महाराज को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अनीता को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।
नमस्कार।